मंडलाचार्य श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराश उपदेश अमृत की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण तो हम आज से प्रयास कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के अलग अलग ग्रंथों पर चर्चा करने का। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद चाहते थे जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो शुरुआत के समय में बहुत रेयरली कुछ ग्रंथ थे जिनका अध्ययन करके भक्त लोग भगवत भक्ति का अभ्यास करते थे या प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आग की तरह फैलने लगा, अधिक से अधिक संख्या में भक्त लोग या लोग भक्त बनने लगे और भारत के या भारत ने पूरे विश्व के हर कोने में कई सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, भक्तों की संख्या बढ़ी, तो फिर श्रील प्रभुपाद एक चिंता करने लगे। प्रभुपाद ने कहा सत्स्वरूप महाराज को, एक लेटर में वो लिखते हैं, सत्स्वरूप महाराज एक मंदिर के अध्यक्ष थे बोस्टन या किसी टेम्पल के, तो उन्होंने कहा कि अभी हम बाहर बहुत फोकस दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, अभी अंदर भी फोकस डालना चाहिए। बाहर हम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अंदर हम कम कुवत हो रहे हैं, तो हम बहुत लंबे समय तक बने नहीं रहेंगे। इसलिए अभी ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम क्या करें, बॉयलिंग द मिल्क। प्रभुपाद ने कहा अभी टाइम आ गया है कि अभी दूध तो बहुत आ गया हमारे पास, लेकिन क्या करना होगा, उस दूध को बॉयल करना होगा, गाढ़ा करना होगा। जितना अधिक ये दूध गाढ़ा हो जाएगा उतनी अधिक उस दूध की मिठास बढ़ेगी, और जब उसको आस्वादन करेंगे, कोई भी व्यक्ति उसका आस्वादन करेगा तो वो हर समय दिव्य आनंद का अनुभव करेगा। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने बॉयलिंग द मिल्क की तुलना भक्तों से की है कि अभी भक्त बहुत सारे भक्त बन गए हैं, बन रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण भावना में मैच्योर नहीं हो रहे हैं, कृष्ण भावना में स्थिर नहीं हो रहे हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिस में क्या है वो बहुत कम कुवत हैं जैसे, और निर्बल हैं। तो उनको बल चाहिए या फिर भक्तों के अंदर मिठास को बढ़ाना है तो ये नहीं कि भक्तों को रोज मालपुआ और वैरायटीज ऑफ स्वीट्स खिलाओ तो उनके अंदर मिठास बढ़ेगी, नहीं। मिठास कैसे बढ़ेगी, जब जितना अधिक आध्यात्मिकता जितनी अधिक बढ़ेगी भक्तों के अंदर उतने अधिक वो भक्त मीठे लगने लगेंगे, और उसके कारण जब कोई भी व्यक्ति ऐसे मीठे भक्त के संग में आएगा तो उसका संग छोड़ने का उसका हृदय नहीं होगा। हाँ, तब लोग हुक्ड हो जाएंगे और एक बड़ा चैन बनेगा। हाँ, और फिर ये आंदोलन स्थिर हो जाएगा। इसलिए सत्स्वरूप महाराज प्रेसिडेंट थे तो उनको कहा कि आप इसमें फोकस करो अभी। हाँ, प्रभुपाद ने उस लेटर में लिखा। तो उसी प्रकार से हम लंबा समय बिताते जा रहे हैं अपने कृष्ण भक्ति में, और हम कई बार हमेशा भ्रमित रहते हैं कि मैं वास्तव में कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी हम हर विचलित रहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे, चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में कहा है, और कृष्णदास कविराज ने भी एक पयार में वही चीज़ कही है। कृष्णदास कविराज ने कहा कि एक जो भक्त है या एक साधक है, वो यदि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम रूप गुण लीला आदि को यदि वो आस्वादन नहीं करता है तो वो व्यक्ति, वो भक्त निर्बल हो जाएगा और गिर जाएगा। हाँ, तो उस जिस प्रकार से कृष्णदास कविराज ने कहा, यदि व्यक्ति फूड आदि ग्रहण नहीं करेगा, अन्न ग्रहण किए बिना वो निर्बल बना रहेगा, शरीर सुदृढ़ नहीं होगा। हाँ, तो उसी प्रकार से एक भक्त के लिए भी हमेशा बलवान और सुदृढ़ रहने के लिए कृष्ण नाम रूप गुण लीला आदि का उसके पास होना बहुत आवश्यक है। उसको धारण करना, उनमें अपने मन को लगाना, और एक भक्त का यही लक्षण है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। यदि भगवत भक्ति में हम तभी प्रगाढ़ रूप से स्थिर हो सकते हैं, भौतिक प्रभावों से, भौतिक वेगों से हम अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, जब हम इसमें आनंद लेना शुरू करेंगे, भक्तों के संग में आकर किसमें आनंद लेना शुरू करेंगे, कथयंतश्च माम नित्यम, फिर तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब आपस में आकर भगवान का गुणगान करेंगे, भक्तों का गुणगान करेंगे और हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं उनकी ओर आगे बढ़ने की चर्चा करेंगे, तो वास्तव में जो भक्तगण हैं वो भगवत भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। इसलिए एक प्रयास है। क्या प्रयास है कि प्रभुपाद ने जब ये देखा अभी मूवमेंट बहुत बढ़ गया है, तो प्रभुपाद ने फिर अलग अलग कोर्सेस इंट्रोड्यूस किए, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ऐसे चार कोर्स उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि ये इंट्रोड्यूस करो। इसके द्वारा क्या होगा कि ये जो भक्तगण है मेरे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्राइमरीली प्रभुपाद ने कहा ये जो ग्रंथ है मैंने अपने भक्तों के लिए लिखा है, और सेकेंडरी है क्या, उनको देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरों को देना। हाँ, तो इसलिए ये रूप गोस्वामी का ये जो ग्रंथ है उपदेश अमृत, ये बहुत यूनिक बुक है, जिसको हमें क्या करना चाहिए, एक तो पर्सनल स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उपदेश अमृत ऐसा ग्रंथ है उसको आप अपने मन और बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते, अपने हृदय के द्वारा इसको घुसने का प्रयास करना चाहिए, सेवा का एटीट्यूड लेकर, तभी वास्तव में उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी के इस अमृत में उपदेशों को कोई व्यक्ति समझ सकता है और अपने प्रैक्टिस में भी ला सकता है। ये नहीं, क्योंकि जनरली हमें ये एटीट्यूड होता है, हम किसी बुक पर मास्टरी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बाय प्रोडक्ट्स है, नाम है, प्रतिष्ठा है, विद्वत्ता है, लेक्चरर है, ये जो भावना है इसको धारण करना चाहते हैं। तो इसलिए ग्रंथों को अप्रोच करना मतलब हमारे हृदय के द्वारा इस सेवा की भावना को धारण करते हुए हम ग्रंथों को अप्रोच करते हैं, तभी वास्तव में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। यह नहीं कहा कि दिव्य ज्ञान मन या बुद्धि प्रकाशित है, गुरु और वैष्णव की कृपा से। इसलिए रूप गोस्वामी के दो ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने चूज किए थे। कौन कौन से दो ग्रंथ हैं? भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। तो ये जो ग्रंथ है इसकी शुरुआत में ही जो पहला इसका जो आमुख है, एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है, इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं इंट्रोडक्शन के पहली लाइन में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। तो वास्तव में ये जो आंदोलन है ये इसके दायित्व या इसका आधार ये वास्तव में रूप गोस्वामी के पास जाता है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ब्रह्म संप्रदाय में हैं, फिर उसमें मध्वाचार्य आए तो ब्रह्म मध्व, फिर माधवेंद्रपुरी जुड़े तो क्या हुआ, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हाँ, माधवेंद्रपुरी के इस लाइन में हम आते हैं चैतन्य महाप्रभु के, तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। और यही संप्रदाय जब रूप गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है, इसके महान महान आचार्य, तो इन आचार्यों में प्रमुख आचार्य कौन है, श्रील रूप गोस्वामी है, जिसके कारण हमें रूपानुग कहा जाता है। आज वास्तव में इस ग्रंथ के कुछ श्लोकों को मैंने सोचा नहीं है डिस्कस करने का, आगे आगे हम अलग अलग स्पीकर्स होंगे, फिर अलग अलग श्लोकों का वो मंथन करेंगे और टीचिंग्स वगैरह हम सीख सकते हैं एक दूसरे के संग से। तो मैं जनरली आज यही चर्चा करने जा रहा था कि उपदेश अमृत का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन भी नहीं, उपदेश अमृत ये जो नाम है ये कितना यूनिक है। रूप गोस्वामी ने इसको बहुत सही रूप से चूज किया है और अलग अलग आचार्यों ने इस पर चर्चा की है। उपदेश अमृत में विशेष रूप से चार महान आचार्यों ने व्याख्या की है जिसका आगे हम चर्चा करेंगे। एक थे राधा रमन गोस्वामी, जो राधा रमन जो टेम्पल है उसके सेवक थे उन्होंने, और उसी उनके टीका को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रकाशित किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने, और चौथे आचार्य श्रील प्रभुपाद। तो ये चार आचार्यों ने उपदेश अमृत पर बहुत मंथन किया है, अपने अनुभवों को और इसके दिव्यता को प्रकाशित किया है। तो रूप गोस्वामी के हम अनुगत हैं और रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को हमें समझना है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस प्रीफेस में ये जानबूझ के ये डाला है नरोत्तम दास ठाकुर का सॉन्ग, रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति कबे हम बुझ बसे युगल पीरती। तो कब वो कहते हैं, जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। अब वही भी आकृति, कब मैं अटैच्ड हो जाऊंगा इन गोस्वामियों ने दिए हुए उनके जो उपदेश हैं, शिक्षा हैं, उनको समझने के लिए कब मेरे हृदय में लालसा ईगरनेस आएगी, तब वास्तव में कोई व्यक्ति राधा कृष्ण के जो दिव्य व्यापार हैं, दिव्य कार्यकलाप हैं, उनको समझ सकता है। और इसी कारण से जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बनारस इलाहाबाद में मिले द्वादश दशाश्वमेध घाट पर, तो वहाँ रूप गोस्वामी को भी महाप्रभु ने कहा और बनारस में सनातन गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज, वो कहते हैं, तबे प्रभु ब्रजे पाठाइला रूप सनातन प्रभु आज्ञाए दुई भाई जाइला वृंदावन। तो इन दोनों को वृंदावन भेजा चैतन्य महाप्रभु ने, और क्यों भेजा, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। भक्ति प्रचारिया सर्व तीर्थ प्रकाशिला मदन गोपाल गोविंदेरा सेवा प्रचारिला। प्रमुख कार्य क्या है, भक्ति प्रचारिया सर्व तीर्थ प्रकाशिला, भक्ति का प्रचार करना, सारे तीर्थों की पुनर्स्थापना करना, और जो मदन गोपाल और गोविंद की सेवा को सारे जगत में प्रदर्शित करना। नाना शास्त्र आनी कैला भक्ति ग्रंथ सार मूढ़ अधम जने ते हो करेला निस्तार। तो वास्तव में ये गोस्वामीगण, महाप्रभु ने क्या किया, इनको भेजा और इन्होंने क्या किया, मंथन किया। नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुनो, श्रीनिवास आचार्य जब षड गोस्वामी अष्टकम में लिखते नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुनो, कि ये जो गोस्वामी है रोज मिला करते थे और क्या करते थे, नाना शास्त्रों का मंथन करते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जनरली जो भी शास्त्र है, सारे जो पुराण है, उपनिषद है, वेद है, इतिहास आदि है, ये क्या करते हैं, चार पुरुषार्थ को सर्वोच्च बताते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं है, रूप गोस्वामी इन चार पुरुषार्थों से भी उत्कृष्ट पंचम पुरुषार्थ है प्रेम पुमार्थ महान। हाँ, कृष्ण के प्रति अहेतु का जो प्रेम है उसकी उसको जागृत करना, उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो पंचम पुरुषार्थ है इसकी व्याख्या सारे शास्त्रों में है, तो आप क्या करो, जाओ और सारे शास्त्रों का मंथन करो और शास्त्रों से प्रमाण आदि ढूंढो और भक्ति शास्त्रों का निर्माण करो। तो जो गोस्वामी लिटरेचर है वो भक्ति शास्त्र दिए उन्होंने, कोई और शास्त्र नहीं है। जो भक्ति की स्थापना करते हैं शास्त्रों के आधार पर, और साथ ही साथ सारे जीवों को जो चैतन्य महाप्रभु पंचम पुरुषार्थ देने के लिए आए हैं उसका ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ऐसे ये जो गोस्वामी हैं इन्होंने बहुत कष्ट उठाया है। हाँ, वास्तव में इन ग्रंथों का निर्माण करने में उन्होंने इतना अधिक कष्ट उठाया है, हम इतने अधिक आलसी और लेजी हो रहे हैं कि हम उन ग्रंथों का स्पर्श भी नहीं करना चाहते। इवन श्रील प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया है, एक एक ग्रंथ को छापने के लिए प्रभुपाद लोगों के द्वार में भिक्षा मांगते थे, धन इकट्ठा करते थे, वृंदावन से थर्ड क्लास के डिब्बे में दिल्ली आते थे गर्मी के समय में, हम अपने रूम से बाहर नहीं निकलते, है ना, हम कूलर हम लगा के उसके सामने फेस करके बैठते हैं, हमें फैन ऑन होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मथुरा से थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठते थे गर्मी में सर्दी में बारिश में, और छिप्पीवाड़ा जो पुरानी दिल्ली का एरिया है इतना भीड़ और ना कितना गंदगी का स्थान है, वहाँ जाते थे, पूरा दिन इस कार्य में लगते थे, श्रीमद् भागवतम की छपाई करना, उसकी एडिटिंग करना, उसका लिखान करना, प्रूफ रीडिंग आदि करना, प्रिंट करना और उसको स्टोर करना और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करना। तो मतलब ये टास्क कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है, बहुत कष्टप्रद है। तो प्रभुपाद ने ये कार्य किया है और गोस्वामी ने भी यही कार्य किया है। एक बार कोई डिवोटी कह रहा था कि इन गोस्वामी ने छाछ पीकर ग्रंथ लिखे हैं और हम पनीर खाके भी उनको पढ़ नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति है। तो मतलब उन्होंने इतना कष्ट उठाया है, ये जो महाप्रभु की आज्ञा को उन्होंने प्रदर्शित किया है, इसलिए है, जैसे प्रभुपाद ने कहा बॉयल द मिल्क, इन गोस्वामियों ने क्या किया, शास्त्रों को बॉयल किया है, और बॉयल करने के बाद जो सार ऊपर मलई आती है ना दूध को बॉयल करते हैं, तो वो वास्तव में भक्ति शास्त्र है जो ये गोस्वामियों ने दिया है सारे, और वास्तव में ये उपदेश अमृत इन भक्ति शास्त्रों का समरी है नट शेल में। आचार्यगण कहते हैं कि साध्य से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक भक्ति करने के लिए जितनी भी आवश्यकता आदि है नट शेल फॉर्म में रूप गोस्वामी ने शुरुआत से लेकर अंत तक जो चीज है वो प्रदान की है। जिस प्रकार से नारद ने व्यास को कहा कि आप सार को प्रस्तुत करो, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम को दिया, भाषा ही ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्र का नेचुरल कॉमेंट्री है। तो इसलिए वास्तव में ये उपदेश अमृत दिखने में तो बहुत छोटा ग्रंथ है, बहुत ही, लेकिन ये जो 11 श्लोक है इस उपदेश अमृत के ये बहुत पावरफुल है। हाँ, क्योंकि रूप गोस्वामी की पोजिशन को समझे बिना आप उपदेश अमृत को नहीं समझ सकते। रूप गोस्वामी क्यों प्रमुख आचार्य हैं, क्या कारण है, बल्कि 6 गोस्वामी यो में उनके स्वयं के गुरु सनातन गोस्वामी हैं रूप गोस्वामी के, वो उनके बड़े भाई भी हैं, लेकिन 6 गोस्वामियों में रूप गोस्वामी क्यों प्रमुख है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सारे रस तत्वों में क्या है, एक्सपर्ट है, रस शास्त्र में ये एक्सपर्ट है, इसलिए रूप गोस्वामी को रसाचार्य कहा जाता है। और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि महाप्रभु ने चूज किया है रूप गोस्वामी को, श्री रूप द्वारा ब्रजेर प्रेम रस लीला के बुझिते पार गंभीर चैतन्य रखेला। रूप कृष्णदास कविराज कहते हैं कि श्री रूप द्वारा ब्रजेर प्रेम रस लीला, चैतन्य महाप्रभु चारी भाव भक्ति दिया नाचामु भुवान, महाप्रभु ने कहा मैं तो 4 प्रकार की भक्ति देकर सारे भुवन को त्रिभुवन को नचाऊंगा, इसमें पागल कर दूंगा भगवत भक्ति में, शांत रस को उन्होंने गिना नहीं चैतन्य महाप्रभु ने। ऐसे ही रूप गोस्वामी ने क्या किया है, जो रस तत्व है ब्रज की, जो भगवत सेवा की जो सर्वोत्कृष्ट भावना है उसको प्रकट किया है, और महाप्रभु की विशेष कृपा के कारण। और वास्तव में देखा जाए रूप गोस्वामी ऐसे एकमेव आचार्य हैं जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय को पढ़ते हैं, हृदय को जानते हैं, इसलिए हम रोज मंगलाचरण में गाते हैं जो श्लोक नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका के इंट्रोडक्शन में लिखा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले, कि ये रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन अभीष्ट को जानते हैं और उसको जानकर उन्होंने उसकी स्थापना की है, उसकी स्थापना ये जगत में की है। हाँ, तो इसलिए कितना आवश्यक है। वास्तव में हम भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, रूप गोस्वामी को समझना है तो आपको चैतन्य महाप्रभु को पहले समझना होगा, तभी रूप गोस्वामी को समझा जा सकता है। क्योंकि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जानने वाले हैं, और उसको कैसे जाना है रूप गोस्वामी ने, हाँ, तो वो एक श्लोक चैतन्य चरितामृत, हाँ, पूरा चैतन्य चरितामृत एक श्लोक में है, जिसका पूरा वो विस्तार है। और वो क्या है, कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशोवानेव साध्यो येनाद्भुत मधुरिमा की दृशोवा मदीया सौख्यम चाश्य मदनुभवात की दृशोम वेत्ति लोभा तद बावाड्य समझनो सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। उसके बारे में हम हमेशा अलग अलग लेक्चर्स में सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, और वो अवतरित होते हैं। क्यों अवतरित होते हैं, क्योंकि उनकी तीन प्रकार की जो इच्छाएं हैं, कृष्ण की तीन प्रकार की जो इच्छाएं उनकी पूर्ति नहीं हुई थी, और जिनकी पूर्ति करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और वास्तव में गौरांग महाप्रभु की लीला कृष्ण की लीला से अभिन्न है, जिसको कृष्ण लीला के बाद गौरांग महाप्रभु की लीला आती है। जैसे किसी बुक के पीछे लिखता अपेंडिक्स होता है, परिशिष्ट, इसमें भी होगा परिशिष्ट होता है, जिसमें ऑथर और बाकी जो भी एक्स्ट्रा श्लोकास ग्लोसरी ये सब दिया जाता है। तो वास्तव में कृष्ण लीला का अपेंडिक्स क्या है या परिशिष्ट क्या है, चैतन्य महाप्रभु की लीला है। तो रूप गोस्वामी जानते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और भक्त के भाव या राधा रानी के भाव में आए हैं, और ये अपनी तीन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। कि राधा रानी का प्रेम क्या था, और दूसरा क्या कि मेरा सौंदर्य क्या है, मेरी ब्यूटी, मेरा सौंदर्य क्या है, और तीसरी चीज क्या है कि मेरे सौंदर्य को देखकर श्रीमती राधा रानी को कौन सा सुख मिलता है। ये तीन चीजें वास्तव में रूप गोस्वामी ने प्रकट की हैं, इसलिए वो उनके हृदय को जानते हैं, इसलिए वो रसाचार्य हैं। और इस रस तत्व को प्रकट करने के लिए उन्होंने दो ग्रंथों का निर्माण किया था रूप गोस्वामी ने, एक था भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु ये रस तत्व से भरे हुए ग्रंथ हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी के इन ग्रंथों को चूज किया, विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु, और जिसको समरी स्टडी के रूप में प्रेजेंट किया, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो ऐसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु को प्रेजेंट करते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि जब ये पब्लिश होकर आया भक्ति रसामृत सिंधु, तो प्रभुपाद ने कहा कि व्यासासन में बैठे थे प्रभुपाद लॉस एंजलिस में, और उन्होंने कहा ये बुक क्या है, लॉ बुक है, इसको उनका लॉ बुक है। और वास्तव में उस ग्रंथ को समझे बिना हम भगवत भक्ति करना हमारे लिए एक स्वप्नवत है। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने भगवत भक्ति की व्याख्या या रस तत्व की व्याख्या वो अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में की है। और वास्तव में ये जो रस चीज है ये हमसे बहुत दूर है। आचार्यगण कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु के दो भाग हैं, एक एक में तो रस तत्व का वर्णन है और आगे साधना भक्ति आदि का वर्णन है। तो दूसरे पार्ट को समझने के लिए जनरली हम हमारे लिए बहुत टफ है। तो जो रस चीज है उसको अपने मन और बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसको तो केवल टेस्ट के द्वारा जाना जा सकता है। और उस टेस्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है, टेस्ट तभी आएगा जब व्यक्ति का पहले फेथ होना चाहिए प्रोसेस के लिए, और दूसरा है साधना को वो रिजिडली फॉलो करता है तो आचार्यगण कहते कि नेचुरली उस रस को वो समझ सकता है या अनुभव कर सकता है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु के साथ साथ उपदेश अमृत को कोई समझता है तो तब वास्तव में व्यक्ति उपदेश अमृत को अप्रिशिएट कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है कि ये रूप गोस्वामी का कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और भक्ति रसामृत सिंधु को सीखे बिना, स्टडी किए बिना उपदेश अमृत हमारे लिए क्या होता है, एक प्रकार से टफ है। एक प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु का सार रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत में प्रेजेंट किया है। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति आदि का वर्णन करते हैं, और प्रभुपाद कहते थे कि ये जो भगवत भक्ति एक विज्ञान है, और विज्ञान का मतलब है हर चीज का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हर चीज की व्याख्या होनी चाहिए। तो ये भक्ति एक विज्ञान है और रूप गोस्वामी ने इस विज्ञान में हर जो भक्ति का एस्पेक्ट है उसकी व्याख्या अपने ग्रंथ में की है। हर एक चीज का डेफिनेशन दिया है, भक्ति साधना भक्ति है, वैधि भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति है, इन सब का डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने अपने उस ग्रंथ में दिया है। और वास्तव में भक्ति रसामृत सिंधु के आगे ये जो उपदेशामृत है ये तो बहुत ही छोटा है। भक्ति रसामृत सिंधु के इंट्रोडक्शन में रूप गोस्वामी ने 11 श्लोकों का वर्णन किया है जिसमें आपने अलग अलग आचार्यों को प्रणाम, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम और कृष्ण के जो संगी आदि है उनको प्रणाम किया है 11 श्लोकों में। लेकिन देखा जाए वो इंट्रोडक्शन के बराबर भी नहीं है ये जो 11 श्लोक है उपदेश अमृत के। इसलिए ये जो ग्रंथ है उपदेश अमृत ये हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। रूप गोस्वामी की ये जो विशेष रूप से ये जो शिक्षा है, रूप गोस्वामी का ये जो टीचिंग उन्होंने उपदेश अमृत में प्रेजेंट किया है, इसको हमारे भगवत भक्ति के लिए या भगवत भक्ति में उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है। और उन्होंने ये विशेष टाइटल चूज किया है उपदेश अमृत। तो वास्तव हम मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर हम ये जो टाइटल है उस पर चर्चा कर सकते हैं किस प्रकार से ये उपदेश इम्पॉर्टेंट है। अब बाकी हमारे अलग अलग आचार्य ने ये जो अमृत है रूप गोस्वामी के इस टाइटल पर किस प्रकार से व्याख्या की है। तो उपदेश अमृत, उपदेश का मतलब ही है इंस्ट्रक्शन। और वास्तव में ये जो बुक है उपदेश अमृत ये चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का सार है। क्योंकि उपदेश अमृत का वर्णन जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में आता है। चैतन्य महाप्रभु एक दिन नीलाचल में समंदर के तट पर बैठे हुए थे और वहाँ अलग अलग सज्जन व्यक्ति और सारे वैष्णवगण थे, रूप गोस्वामी भी वहाँ थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कई शिक्षाएं वहाँ प्रकट की, कई श्लोकों का उच्चारण आदि किया और उन श्लोकों को एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के उन टीचिंग्स को रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत के रूप में हमें प्रेजेंट किया है। जैसे महाप्रभु ने 8 श्लोका दिए हैं तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के उन्हीं शिक्षाओं को रूप गोस्वामी उपदेश अमृत के माध्यम से 11 श्लोकों में वो प्रेजेंट करते हैं। तो जब स्वरूप दामोदर ने पूछा कि ये रूप गोस्वामी आपके हृदय को कैसे जान पाता है, तो उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे यह आमाय प्रयागे मिलिला, योग्य पात्र जाने यहाँ मोर कृपा तहिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो रूप गोस्वामी है ये मुझे प्रयाग में मिले थे और मैंने देखा कि ये योग्य है, क्वालिफाइड है और जिनके कारण मैंने उनके ऊपर कृपा की है, तवे शक्ति संचारी आमी कैलु उपदेश। मैंने क्या किया, वास्तव में अपनी सारी शक्ति का संचार रूप गोस्वामी में किया है और उनको मैंने उपदेश प्रदान किया है और उन्हीं उपदेशों को जो चैतन्य महाप्रभु से उनको अलग अलग उपदेश अलग अलग समय प्राप्त हुए हैं उन्हीं सब उपदेशों को रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है या ग्रंथों में क्या किया है, प्रेजेंट किया है। तो भगवान इस जगत में आते हैं तो वो हमेशा भगवान चाहते उपदेश देने के लिए आते हैं। चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं मध्य लीला में अर्जुनेर कही तेचन हित उपदेश। भगवान क्या करते हैं अर्जुन को, उनका क्या हित है उसका उपदेश प्रदान करते हैं। तार देखी मोरा है आनंद आवेश, तो वो जो ब्राह्मण था जिसको उनके गुरु ने कहा था कि तुम गीता का रोज पाठ करो, तो उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे आनंद आता है जब मैं इस उपदेशों को देखता हूँ कि अर्जुन के प्रति हितमय उपदेश कृष्ण ने किए हैं और जब इनको देखता हूँ और इनको समझने का प्रयास करता हूँ तो मुझे और अधिक आनंद अनुभव होता है। और वास्तव में जिस प्रकार से भगवान उपदेश देने के लिए जगत में आते हैं और प्रभुपाद कहा करते थे कि भगवान तो उसी प्रकार से उपदेश देते हैं, भगवान हमेशा अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को माध्यम बनाकर अभक्तों को वो उपदेश स्वीकार करना होता है। जिस प्रकार से घर में जो सास है वो हमेशा बेटी को डांटती हैं, बेटी को बोलती हैं, लेकिन कौन सीखता है उसके माध्यम से, बहू को शिक्षा दी जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान भी उपदेश प्रदान करने के लिए आते हैं और भगवान के अलावा जो उपदेश भगवान ने दिए हैं उन्हीं उपदेशों को भगवान के भक्त प्रदान करते हैं। आचार्य का मतलब यही है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में अद्वैत आचार्य का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते कि आचार्य का मतलब क्या है, भक्ति उपदेश विनो तार नाही कार्य अतएव नाम है अद्वैत आचार्य। कि उपदेश कौन से होने चाहिए, भक्तिमय साधना के अलावा या भक्ति का वर्धन करने के अलावा कोई और उपदेश नहीं होने चाहिए। सही अभिमान सुखे आपना पासरे कृष्ण दास हव जीव उपदेश करें। क्योंकि उपदेशों का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उन उपदेशों को स्वीकार करके जीव के अंदर कृष्ण दासत्व की भावना स्ट्रांग हो जानी चाहिए। और वास्तव में उपदेशों का ये प्रमुख उद्देश्य है। तो उपदेश हमें चाहिए, ये उपदेश चाहिए। हमारी स्थिति बिल्कुल उस वेश्या के समान है जो हरिदास ठाकुर को जिसने अप्रोच किया था। और जब हरिदास ठाकुर के मुख से उन्होंने नाम संकीर्तन को सुना और वो जो वेश्या है बहुत द्रवित हुए और अपने गलती को समझ पाई और उन्होंने हरिदास ठाकुर को अप्रोच किया और उस वेश्या ने कहा हमें कौन से उपदेश चाहिए, वास्तव में हम कौन से उपदेश की आकांक्षा कर रहे हैं, कौन से उपदेशों को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, कौन से उपदेशों को जानने के लिए हमें ग्रंथ आदि पढ़ने चाहिए। हाँ, तो वो वेश्या वास्तव में वो प्रकट करती है, इस भावना को प्रकट करती है और उसी भावना को सनातन गोस्वामी ने भी प्रकट किया था। सनातन गोस्वामी ने कहा आपनार हिता हिता किछु नाही जानी, ग्राम में व्यवहार लोग को पंडित कहे माने। मुझे तो बाहरी रूप से लोग बड़ा मान सम्मान देते हैं, मुझे सोचते कि बहुत विद्वान है, पंडित है, लेकिन वास्तव में मेरी स्थिति क्या है, मैं अपना भला नहीं जानता, मेरा हित किस चीज में है और अहित किसी चीज में है। हाँ, वो वेश्या ने भी यही कहा, वेश्या कहे कृपा करी करह उपदेश कि मोर कर्तव्य जाते जाय भव क्लेश। ये शिष्य का ड्यूटी है, इस प्रकार के उपदेशों को उसको जानने के लिए तत्पर होना चाहिए। वो वेश्या हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरती है और वो कहती है कृपा करी करह उपदेश, हे हरिदास ठाकुर आप मुझे उपदेश प्रदान करो। और कौन से उपदेश, की मोर कर्तव्य, मेरे का कर्तव्य है, और ऐसे कर्तव्य के द्वारा ऐसे उपदेश दो कि जिसके द्वारा जाय भव क्लेश, इस भौतिक संसार का जो दुख है, हाँ भौतिक संसार में जो गिरा हुआ हूं, हाँ उससे मैं मुक्त हो जाऊं। और वास्तव में हमारी स्थिति वैसी है, इसी उपदेशों को जानने के लिए, इसी उपदेशों को समझने के लिए, इसी भावना को लेकर हमें क्या करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए साधु को, गुरु को और शास्त्रों को, इन तीनों को भी। क्यों हमें ये उपदेश चाहिए, क्यों चाहिए। चैतन्य चरितामृत अलग अलग प्रकार से इसको डिफाइन करता है। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में थे तो एक दिन वो गंगा के किनारे बैठे थे अपने शिष्यों के साथ, और नवदीप के जो पंडित आदि थे उन सबको ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा विद्वान आ रहा है कश्मीर से, जिसका नाम था केशव कश्मीरी, और वो सबसे दिग्विजय पत्र लिखता था और ये घोषित करता था कि सबको मैंने हरा दिया है और मैं परम विद्वान हूँ, पंडित हूँ। तो नवदीप तो उस समय सबसे विद्वान लोगों का स्थान था, सारे जगत से लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो जैसे नवदीप वासियों को पता चला कि केशव कश्मीरी आ रहा है, तो नवदीप के जो भट्टाचार्य हैं, विद्वान आदि हैं, वो डर गए। उन्होंने सोचा उसके सामने तो हमारी खैरियत नहीं है, हम क्या हो जाएंगे, उसके सामने हार हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन एक उपाय है। उस विद्वान को कहाँ भेजे हम, निमाय पंडित के पास, और निमाय पंडित उसको हरा देते हैं तो कहेंगे कि हमारे गांव का बच्चा उनको हरा देता है तो फिर हमारी क्या स्थिति है, और निमाय पंडित को हरा दिया तो फिर हम कह सकते कि चलो वो बच्चा था उसको हरा दिया। तो इसको सोचकर वो थोड़े डरे हुए थे, और निमाय पंडित या महाप्रभु वो जानते थे, तो महाप्रभु अपने स्टूडेंट्स को लेकर ग्रामर का लेक्चर आदि दे रहे थे उनको गंगा के किनारे। तो केशव कश्मीरी आए और महाप्रभु ने उनसे बड़े विनम्रता के साथ आदर व्यवहार किया, और फिर हम जो सुनते हैं कि किस प्रकार से उनको हरा दिया। उनके काव्य में गलतियां निकालकर, फिर वो केशव काश्मीरी चैतन्य महाप्रभु या निमाय को उनकी शरण ग्रहण करता है और वो भी कहता है कि आप भी मुझे उपदेश दो। और उन उपदेशों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो केशव काश्मीरी कहता है, हे न उपदेश मोरे कह महाशय आरजे न दुर्वासना चित्त नाई हाय। और वास्तव में उन्होंने कहा कि हे महाशय, आप मुझे ऐसा उपदेश दो कि मेरे हृदय, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में जो दुर्वासना है, भौतिक भोग की लालसा बहुत प्रगाढ़ रूप से मेरे हृदय में ठूस ठूस के भरी है, उसके तीव्र संस्कार मेरे हृदय में है, इस दुर्वासना को मेरे चित्त से निकल जाए, ऐसे उपदेश चाहिए मुझे। और उसे, और वास्तव में यही हमारी स्थिति है। रूप गोस्वामी के उपदेश अमृत को स्वीकार करना मतलब हमारा हृदय, हम ढूंढे कितनी दुर्वासनाओं से, काम वासना भौतिक भोग की लालसा से भरा पड़ा है, और इन उपदेशों, ऐसे उपदेश हमें चाहिए कि जिन उपदेशों के द्वारा हमारे हृदय की दुर्वासना समूल नष्ट हो जाए। और इसलिए प्रहलाद महाराज ने नरसिम्हा देव को कोई प्रार्थना नहीं कि भगवान ने बहुत पुश किया, तो उन्होंने एक ही चीज मांगी, यदि दाशामि मे कामान वरांस्त्वं वरदृषभः कामानां हृदि असरोहं भवतास् तिव्रनेम्बर। उन्होंने कहा कि हे वरों को देने वाले सर्वश्रेष्ठ नरसिम्हा देव, आप कुछ मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ये दे दो कि मेरे हृदय में, यदि दाशामि मे कामान, कामानां हृदि असरोहं, मेरे हृदय में जो काम है, दुर्वासना मेरे चित्त आदि में भरी पड़ी है, उसको निकाल कर फेंक दो। और इसी कारण से एक शिष्य को गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए और उनसे सदैव लालायित होना चाहिए उपदेशों को स्वीकार करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करने के लिए। क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या है, गुरु के इंस्ट्रक्शन एक बद्ध जीव के प्रति, शिष्य के प्रति जो दया की, कंपैशन की भावना गुरु के हृदय में जागृत होती है, तो वो वास्तव में उस शिष्य को उपदेश के रूप में वो दया क्या होती है, निकल पड़ती है। और उस दया उपदेश रूपी रस्सी को यदि शिष्य गंभीरता से पकड़ता है तो इस भौतिक जगत से बाहर आ सकता है और उसके हृदय की जो दुर्वासनाएं हैं वो भी बाहर निकल सकती हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को मदाई को जब क्षमा किया नित्यानंद प्रभु के द्वारा, तो मदाई ने कहा, यदि मोरे प्रभु तुम्हें हैल सदाय इथे उपदेश मोरे कर महाशय, यदि आप वास्तव में मेरे ऊपर कृपालु हो, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, मतलब जब वो उपदेश दे रहा है वास्तव में वो उसकी कृपा है, जब हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो गुरु की कृपा क्या है, गुरु की कृपा है कि जब हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं और उस इंस्ट्रक्शन में इतना बल होता है कि हमारे चित्त की सारी दुर्वासना आदि पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। इसलिए शिष्य को भागना नहीं चाहिए गुरु से कि मैं अभी मिलूंगा तो कुछ नया डिफरेंट मुझे मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा, कष्ट अनुभव होगा, तो उससे डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, बल्कि शास्त्र कहते हैं गुरु को, शिष्य को सदैव तत्पर होना चाहिए। क्योंकि गुरु के इंस्ट्रक्शन क्या है, गुरु के इंस्ट्रक्शन को, उपदेशों को शिष्य स्वीकार करता है तो शिष्य के अंदर उसका जो साध्य है, गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए वो फिक्स हो जाता है, कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगा और लक्ष्य को भूलेगा नहीं, यदि गुरु के उपदेशों को हम स्वीकारते हैं। ये उदाहरण दिया जाता है, जैसे घोड़ा है, जब घोड़े को घोड़ा गाड़ी चलाते हैं तो घोड़े के आंखों में फ्लैप रखते हैं, एक कवरिंग होता है ऐसा, उसकी आंखें इधर उधर नहीं दिखती, और यदि फ्लैप नहीं है तो घोड़ा दौड़ेगा, भागेगा जिस दिशा में, क्योंकि घोड़े की आंखों में प्रॉपर फ्लैप नहीं है तो उसको घोड़ी भी नजर आएगी तो वहां भागेगा, वो लक्ष्य को भूल जाएगा। तो गुरु के उपदेश क्या है, उस फ्लैप के समान है जो हमें क्या करते, फिक्स करते हैं हमारे आगे के लक्ष्य के प्रति, और जिसके कारण ऐसे उपदेशों को यदि शिष्य सिंसियरली अपने हृदय में धारण करता है, उनका अनुपालन करने लगता है, तो वो कभी भी अपने जीवन का जो साध्य है और अपने जीवन में जो साधना है उसे विचलित नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उससे विचलित कर सकती है यदि वो गुरु के इंस्ट्रक्शन से विचलित नहीं होता। इसलिए केशव काश्मीरी ने कहा महाप्रभु को कि आप ऐसा उपदेश दो जिसके द्वारा मेरे हृदय की दुर्वासना चली जाए। इसी कारण से भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ क्योंकि वो उपदेश देने के लिए तत्पर है। इसी कारण से अर्जुन भी तैयार थे उपदेशों को स्वीकार करने के लिए। और वास्तव में हमें हमेशा लालायित होना चाहिए, हमेशा तत्पर होना चाहिए। इसलिए हमारे हृदय में जो ये ग्रेड है, काम है, हाँ, वो तभी जाएगा जब हम भक्तों के संग के लिए लालायित होंगे। हाँ, लोभ साधु संगे हरि कथा, प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि हमारे अंदर जो लोभ आदि हैं वो कैसे जाएगा, लोभ साधु संगे, साधु संग करने के लिए लोभी हो जाए हम, ग्रेडी हो जाए। हाँ, और हरि कथा, लोभ साधु संगे हरि कथा। हाँ, तो इसलिए अर्जुन ने भी भगवान की शरण ग्रहण की। उन्होंने कहा कार्पण्य दोष हो उपहत स्वभाव पृछामि त्वं धर्म सम्मूढ चेता यश्रेयशानिश्चितं भूहि तन्त्र मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम। तो अर्जुन भी तत्पर हो गया था कि प्लीज प्लीज कृष्णा आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दो। हाँ, इसलिए उनके इंस्ट्रक्शन को स्वीकार किया तो अर्जुन के हृदय का जो अंधकार है, अर्जुन के हृदय में संशय रूपी जो दावानल है, संशय रूपी जो आसुर है, वो खत्म हो गए। और क्या वास्तव में पर्पस क्या है ऐसे उपदेशों का, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से सिखाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु क्या उपदेश, ऐसे उपदेशों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि कैसे हम फिक्स हो जाएं कृष्ण की सर्विसेस में। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जब वो अपने सन्यास गुरु केशव भारती से मिलने गए, नवदीप को उन्होंने छोड़ा अर्ली मॉर्निंग में, क्रॉस किया तैरते हुए नदी को, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, चंद्रशेखर आदि ये चार लोग गए इनके साथ। और वहाँ उन्होंने केशव भारती को अप्रोच किया और चैतन्य महाप्रभु अपने सन्यास गुरु को अप्रोच करते हुए वो कहते हैं आइले न प्रभु जथा केशव भारती मत्त सिंह प्राय प्रिय वर्गे रसमती। महाप्रभु पागल सिंह के समान दौड़ते हुए कटवा आए और उन्होंने केशव भारती को अप्रोच किया। अद्भुत देहर ज्योति देखी या तहान उठी लेना केशव भारती पुण्यवान। केशव भारती ने चैतन्य मुनिमाय पंडित के शरीर, दिव्यमय शरीर को देखा, देख के वो पुण्यवान केशव भारती खड़े हो गए। दंडवत प्रणाम करिया प्रभुताने कर जोड़ करी स्तुति कहे न आपने। तो महाप्रभु ने केशव भारती के सामने दंडवत प्रणाम किया, दोनों हाथों को जोड़ते हुए उनकी स्तुति करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित केशव भारती को कहने लगे अनुग्रह तुम्हें मोरे कर महाशय पतित पावन तुम्हें महाकृपा माय। मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, मुझे की दया की आवश्यकता है। पतित पावन क्या है, मौसम पतित प्रभु ना पाई बया, नरोत्तम दास ठाकुर कहते। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए क्योंकि पतित पावन, आप पतितों को पावन करने का सामर्थ्य रखते हैं और महाकृपामय है। तुम इसे दीवारे पार कृष्ण प्राणनाथ निरवधि कृष्ण चंद्र वसये तोमात। उन्होंने कहा कि आप मुझे कृष्ण दे सकते हो, मेरे प्राणनाथ है क्योंकि कृष्ण आपके पास सदैव निवास करते हैं। कृष्ण दास विनु मोर नहे किछु आन हे न उपदेश तुम्हें मोरे कहे दान देह दान। उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसे उपदेश दो कि जिसके द्वारा हमें कृष्ण के प्रति जो दासत्व की भावना है, दासत्व की मतलब सर्विस में फिक्स होने की भावना, जिसमें क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ। तो वास्तव में उपदेशों का मतलब यही है कि जिन उपदेशों के द्वारा हम गुरु कृष्ण और वैष्णव की सेवा में स्थिर नहीं है, स्थिर बुद्धि नहीं है, स्थिर मति नहीं है, तो वास्तव में हमारे उपदेशों में क्या है, उपदेशों में वास्तव में कमी नहीं है आचार्यों के, लेकिन हम उनका ठीक रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए जिन उपदेशों का पालन करने से हम कृष्ण की सेवा में स्थिर हो जाए। जिस प्रकार से हम हनुमान के बारे में सुनते हैं, भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो उसके एंड में अर्जुन ने कहा यथेच्छेसी तथा कुरु, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही करूंगा। मतलब अर्जुन फिक्स हो गए, तो हमें उपदेशों की बारंबार आवश्यकता है, ऐसे नहीं कि एक बार हो गया अभी आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसलिए आवश्यकता है क्योंकि माया के द्वारा इंद्रिय अनियंत्रित होने के कारण हम क्या होते हैं, सदैव विचलित रहते हैं अपनी सेवा में, अपनी साधना में और अपने लक्ष्य में सदैव टलमल होते रहते हैं। इसलिए बारंबार ये उपदेश, अमृत रूपी उपदेश हमारे कान में जाने बहुत आवश्यक है, तो हम फिर जग जाते हैं। तो हमें उपदेश किससे स्वीकार करना चाहिए? तो आचार्यगण कहते हैं कि हमें चार प्रकार के स्थानों से उपदेशों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक है जो संप्रदाय से विहीन है, इसलिए भगवद गीता में कृष्ण ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम है अर्जुन, परंपरा से उस ज्ञान को स्वीकार करो। और उसी को पद्म पुराण में कहा गया है संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते विफला मतः अतः कलो भविष्यति चत्वारः संप्रदायिना, कि जो संप्रदाय के द्वारा जो अधिकृत है उनके माध्यम से ही हमें उपदेश स्वीकार करना चाहिए, और जो असंप्रदाय वाले व्यक्ति आदि हैं उनसे हमें उपदेशों को कभी भी स्वीकार करना नहीं चाहिए। और दूसरा क्या है, अवैष्णव, जो भक्त नहीं है, मैं भी बहुत अच्छे गुण हो सकते हैं, बहुत अच्छे शब्द जाल बना सकता है, बहुत अच्छा नरेटर हो सकता है, बहुत भौतिक ज्ञान आदि से वो भरा पड़ा है, या फिर मैं भी अध्यात्म का भी बहुत ज्ञान है। कई भौतिक ऐसे नॉन डिवोटीज होते हैं, अवैष्णव होते हैं, उनको गीता आदि बहुत कंठस्थ है, लेकिन भगवत सेवा, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा या भगवत रूप आदि को स्वीकारते नहीं है। तो ऐसे अवैष्णवों के द्वारा हमें उपदेशों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण का श्लोक कोट करते हुए यही हरि भक्ति विलास में कहा है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथाप्यम, ऐसे उपदेशों को श्रवण नहीं करना चाहिए जो अवैष्णव के मुख से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो जहरीले सांप के विष के समान है। सांप दूध का पान करता है, लेकिन वो दूध पीता है किसी पॉट में, बर्तन में, तो दूध का कलर चेंज तो नहीं होता। लीलाएं बहुत अच्छी लग सकती है उनके द्वारा वर्णित, बहुत अच्छे उदाहरण वो प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, विष के समान है, शुद्धि नहीं होगी हमारे हृदय में, काम आदि भोग की जो लालसा है और वो बढ़ेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं उनके माध्यम से ही हमें श्रवण करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसे भौतिकतावादी लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कथाएं आदि करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है, भौतिक भोग। और जो तीसरे व्यक्ति हैं, दोज हु आर मटेरियली मोटिवेटेड, जो भौतिक भोग की कामना से मोटिवेटेड हो गए हैं और उन्होंने आश्रय लिया है अध्यात्म का, कथा है, कीर्तन आदि है, या साधु वेश आदि धारण करना, और क्या नाम, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि के लिए, जो भौतिक रूप से मोटिवेटेड है, ऐसे लोगों के द्वारा हमें उपदेशों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा उपदेशों को स्वीकार करते हैं जो भौतिक स्वार्थ में मग्न है, उन उपदेशों के माध्यम से हम हमारा नाश करेंगे। जैसे मंथरा है, कई कई ने डिवोटी थी वो राम की, कितना अच्छा डिवोटी थी, ठीक ही नहीं, राम के लिए कितना डिवोटेड थी, लेकिन गलती से उन्होंने एक तो वो अवैष्णव मंथरा और दूसरा क्या है, मटेरियली मोटिवेटेड, भौतिक कामना से भरी हुई मंथरा के द्वारा उन्होंने उपदेशों को स्वीकारा, और उपदेशों को स्वीकारा तो क्या हुआ, पूरा रामायण। वैसे ही दुर्योधन शकुनी के द्वारा उन्होंने इतने उपदेशों को सुना, और ऐसे उपदेशों को सुन के वैष्णव से द्वेष बढ़ने लगा, वैष्णव के प्रति अपराध की भावना बढ़ी। पांडवाज है, और नेचुरली वैष्णव से द्वेष होता है तो वो व्यक्ति के अंदर भगवत द्वेष, भगवान के प्रति द्वेष की भावना स्वाभाविक रूप से आएगी। कंस का भी हम उदाहरण सुनते हैं, कैसे उनके जो मित्रगण थे उन्होंने कहा, नहीं अभी भी जो जन्म है ब्रज आदि में, सबको मरवा दो और साधुओं को तंग करो, ऐसी बहुत सारी चीजें वर्णित है श्रीमद भागवतम में। तो इस प्रकार से जो मटेरियली मोटिवेटेड है, इवन भक्त के वेश में भी क्यों माया क्या करती है, भक्त के वेश में भी आती हैं, और भक्त मटेरियली मोटिवेटेड डिवोटीज वो भी क्या करते हैं, उनसे हम उपदेशों को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे उपदेश हमें क्या है, एक तो भौतिक लाभ के लिए हमारे हृदय में केवल लालसा रहेगी सदैव, कैसे भौतिक लाभ मुझे मिलेगा, और ऐसे भौतिक भक्त के वेश धारण करके जो व्यक्ति है उनसे हम, मैं भी वो भक्त का वेश धारण किए हुए हैं, उनसे हम जब उपदेशों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन को डैमेज करते हैं। और दूसरा क्या है, गुरु और कृष्ण की सेवा से धीरे धीरे विलग होने लगते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और चैतन्य महाप्रभु फाइनली हमें कहते हैं मायावादी, महाप्रभु ने कहा मायावादी बादशाह सुनी ले हय सर्वनाश। तो ऐसे ये जो उपदेश है ये ऐसे लोगों के द्वारा स्वीकार्य नहीं है। तो ऐसा वैसा टाइटल नहीं है रूप गोस्वामी के इस ग्रंथ का। और कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है उपदेश देने के लिए, महाप्रभु ने तो सबके लिए बोला गया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है या तार यही देश। महाप्रभु ने कहा सब लोग क्वालिफाइड है, हाँ लेकिन नहीं, हाँ हमें समझना चाहिए। महाप्रभु ने तो कहा कृष्ण उपदेश, हाँ प्रभुपाद तो कहते हैं सबके पास अधिकार है, हाँ जो हम शुद्ध भक्त के आज्ञा को फॉलो करते हैं, उनके उपदेशों को फॉलो करते हैं, तो नेचुरली हमारे पास अधिकार होता है उसी उपदेश को आगे देने का। प्रभुपाद ने कहा छोटा सा बच्चा भी उपदेशक बन सकता है। एक बार वो सरस्वती को बुलाया, छोटी जो बेटी थी मालती माता जी की, और उनको कहा मालती सरस्वती बताओ कृष्ण कौन है या परम भगवान कौन है या कौन कौन भगवान है। तो छोटी सी सरस्वती कहती है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण क्या है परम भगवान है। उन्होंने कहा देखो ये भी प्रचारक है, यही ये भी उपदेशक है। हाँ तो प्रभुपाद एक बार विदेशों में किसी टेम्पल में थे, तो जर्मनी के कुछ डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको मिलने के लिए आए। तो उन बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा, पुस्तक वितरण करने वाले भक्तों को लगा प्रभुपाद हमसे मिलेंगे तो वो पूछेंगे क्या स्कोर है, कैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हो और कैसे लोगों की प्रतिक्रिया आदि है। तो प्रभुपाद ने वो सब पूछा नहीं, प्रभुपाद ने पूछा व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। प्रभुपाद ने कहा कि सबसे उन्नत सैद्धांतिक समझ क्या है, सिद्धांत की समझ क्या है, सबसे बड़ी सिद्धांत की समझ क्या है। तो वह प्रभुपाद के शिष्य थे पृथ्वीदास और हरक, उन्होंने कहा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, कृष्ण उपदेश का मतलब क्या है। अभी ये भक्त स्पेकुलेट करने लगा, उन्होंने कहा कृष्ण का मतलब तो कृष्ण है उपदेश, उन्होंने कहा उपदेश का मतलब है लैंड, कृष्ण उपदेश का मतलब है लैंड ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, प्रभुपाद ने कहा इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, कृष्ण के उपदेश है, तुम इस प्रकार से ये मत करो, क्या कहते हैं स्पेकुलेट मत करो। तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण के उपदेश तो मुझे बताओ क्या है, कृष्ण के उपदेश क्या है, क्या है वो कृष्ण का प्रमुख उपदेश। तो भक्त ने कहा सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम रज। तो प्रभुपाद ने कहा यस दैट इज आवर बिजनेस, हमारा यही बिजनेस है, क्या करना, उपदेशों के द्वारा कृष्ण के प्रति सरेंडर होना। तो इसलिए उपदेश देने का अधिकार हम सबके पास है अलग अलग प्रकार से, लेकिन फिर भी दो चीजों को, दो लोगों को उपदेश देने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने अधिकार को समझते हुए। पहला है प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मूर्खोपदेशो ही प्रकोपायन शांताय। मूर्ख को उपदेश दोगे तो वो और क्रोध भड़केगा उसका, तो सोच समझ के उपदेश देना चाहिए। पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, जो सर्प है जो विष ही निकालता है उसको दूध पिलाते रहोगे तो वो विष ही देगा आपको, स्वीट नेक्टर नहीं प्रदान करेगा। और दूसरा क्या है, हमारे योग्यता के अनुसार अपनी योग्यता अधिकार आदि को देखकर हमें समझना चाहिए। हाँ कभी भी जो वरिष्ठ वैष्णव है या गुरु है उनको उपदेश देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसके परिणाम क्या है, बहुत भयावह परिणाम है। वह माधवेंद्रपुरी की लीला से हम समझते हैं, माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम अवस्था में क्या कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, कृष्ण के विरह की अनुभूति कर रहे थे श्रीमती राधिका की भावना में, हे नाथ कदाव लोकेशे, हे हे कृष्ण, हे मथुरानाथ, हे मथुरानाथ कब मुझे आपका दर्शन प्राप्त होगा, आपके विरह में मेरा हृदय क्या हो रहा है, जल रहा है। तो ऐसी भावना कृष्ण के प्रति माधवेंद्रपुरी की थी, और वहां रामचंद्रपुरी भी थे उनके शिष्य, वो गुरु को लेक्चर देने लगे, उपदेश देने लगे, ये क्या कर रहे हो आप, क्यों रो रहे हो, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, आप थोड़ा निराकार ब्रह्म का क्या करो, स्मरण करो। तो उन्होंने कहा मेरे नजर के सामने से हट जाओ, तुम्हें मैं देखूंगा और तुम्हारी इस बातों को सुनूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये भावना, गर्व की भावना आती है, तो हम क्या करते हैं, गुरु को भी उपदेश देना शुरू करते, क्योंकि महाप्रभु कहते हैं गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन, मैं तो मूर्ख हूं और मैं सदैव अपने गुरु के शासन में रहना चाहता हूं। क्योंकि जब तक हम शासन में नहीं रहेंगे, शासन शस्त्र शास्त्र और शासन, हाँ ये तीन शब्द एक ही लाइन में है, हाँ शास्त्र, शास्त्र का शासन, साधु का शासन, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। शासन का मतलब है कि उनके इसमें रहो, आप दायरे में रहो, शास्त्र के, गुरु के, साधु के। हाँ तो ये जो रामचंद्रपुरी है वो अपने गुरु को भी उपदेश देने लगे। इतना ही नहीं, जब जगन्नाथपुरी गए तो वहां जाकर उन्होंने महाप्रभु के संगियों को नहीं छोड़ा, और फाइनली किसको उपदेश देने लगे, चैतन्य महाप्रभु को, उनमें दोष आदि ढूंढने लगे। हाँ तो महाप्रभु नहीं चाहते थे, महाप्रभु ने इसको एक एक लीला से सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे, तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलने के लिए निकले जगन्नाथपुरी, और जाते जाते उनको पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ वो रास्ते में जो भी झारखंड के जंगलों से गुजरते हुए जो भी रास्ते में कोई पानी मिलता था उसको वैसे पीते थे, तो बहुत गंदा पानी, दूषित पानी पीकर उनको कंडू रोग हो गया। कंडू रोग जो बहुत सारे फोड़े हो जाते, पस निकलने लगता है, गंदा हो जाता है शरीर, ये सब हुआ। तो उन्होंने कहा अभी ये शरीर का क्या लाभ, अभी रथ यात्रा नजदीक आ रही है, हाँ मैं अभी जाकर पुरी में क्या करूंगा, जगन्नाथ के रथ के नीचे अपने देह को त्याग दूंगा। इस भावना को लेकर वो पहुंचे, हाँ लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने डांटा, अरे ये तो तुम्हारा धन नहीं है, ये मेरा धन है। क्योंकि जब आप गुरु से दीक्षा लेते हो, उनको समर्पित होते हो, तो ये शरीर आपका नहीं रहता, ये गुरु की प्रॉपर्टी होती है, और गुरु को जैसा अधिकार वो चाहे वैसा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने कहा ये शरीर तुम्हारा धन नहीं है, ये शरीर मेरी प्रॉपर्टी है, और तुम्हें किसने अधिकार दिया इस प्रॉपर्टी को लूज करने का। तो फिर महाप्रभु ने उनका आलिंगन आदि किया और काफी शिक्षाएं दी। फिर सनातन गोस्वामी सोचे कि नहीं अभी मुझे यहाँ से, अभी ना सब लोग बहुत आदर और ये सब कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु मुझसे बड़ा इस प्रकार से सम्मान आदि की भावना से व्यवहार कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, जगदानंद पंडित से पूछा। जगदानंद पंडित से पूछा तो जगदानंद पंडित ने कहा, पंडित कहे तुम्हारा वास योग्य वृंदावन। पंडित ने कहा तुम्हारे लिए जो रहने का अच्छा स्थान है ना, वो तो वृंदावन है, तुम वृंदावन चले जाओ। तो फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी से मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा, सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को कहा, जगदानंद पंडित आमें युक्ति पूछिला, वृंदावन जायते ते हा उपदेश दिला। उन्होंने कहा मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे, तो उन्होंने कहा एक उन्होंने उपदेश दिया है मुझे, उपदेश दिला, वृंदावन चले जाओ। ये तुनि महाप्रभु सरोष अंतरे जगदानंदे क्रुद्ध हया करे तिरस्कारे। फिर महाप्रभु क्रोधित हुए, हाँ जगदानंद के प्रति, कालिकार बटुया जगा आछे गर्वी हैला, तोमा सबारे उपदेश करते लागिला। महाप्रभु ने कहा एक कल का बेटा है, हाँ ये जो जगा जगा बोला महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को, इतना गर्वित हो गया है, हाँ ये क्या करने लगा है, आप सबको उपदेश देने लगा है सनातन। महाप्रभु ने कहा व्यवहारे परमार्थ तुम्हें तार गुरु तुल्य, तुम्हारे उपदेश ना जाने आपनार मूल्य। सनातन तुम तो उसके गुरु के समान हो, वो भूल गया है अपनी स्थिति को। हमारा उपदेष्टा तुम्हें प्रामाणिक आर्य, तुम्हारा ही उपदेश बालक करे ऐसे कार्य, वो बाल्य बुद्धि रखता है। हाँ तुम तो मेरे भी उपदेशक हो, और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने उनसे उपदेश को स्वीकार किया था जब वो वृंदावन जा रहे थे। तो महाप्रभु को उन्होंने कहा कि जो सर्कस वाले होते हैं वही अपने साथ पूरा आडंबर लेकर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाए बार नहीं, यही परिपाटी, वृंदावन जाने की स्थिति नहीं है कि हजारों लोगों को लेके चलो, हाँ वृंदावन है, वृंदावन तो एक या दो लोगों के साथ जाओ। तो इस प्रकार से जो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास अपने अधिकार के अनुसार हमें उपदेशों को प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने ये जो टाइटल चूज किया है उपदेश, ये बहुत यूनिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सार्थकता प्रदान करता है और अमृत, उसके साथ साथ क्या है, अमृत। प्रभुपाद कहते हैं उपदेश अमृत, उपदेश अमृत, अमृत का मतलब है इसेंशियल, मतलब सार है एक प्रकार से, महत्वपूर्ण। हाँ तो ये जो उपदेश है इसेंशियल इंस्ट्रक्शन, तो अमृत के कई अर्थ अलग अलग आचार्यों ने दिया है। अमृत का मतलब है, एक मतलब है डेथलेसनेस, डेथलेसनेस को क्या कहेंगे, जो मरता नहीं है। तो ऐसे उपदेश, ये उपदेश अमृत क्या है कि जिनको आप धारण करोगे तो आप इस जो जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है इससे मुक्त हो जाओगे। और अमृत का मतलब ये क्या है, बिलाउड, बिलाउड का मतलब है रूप गोस्वामी के बहुत प्रिय इंस्ट्रक्शंस हैं जो रूप गोस्वामी के हृदय में हैं, जो क्या करते हैं हम सबको देना चाहते हैं। और अमृत का मतलब है कि जो विष के विरोधी होता है, विष को खत्म करने का ये रखता है। तो कलयुग तो विष के समान है और हम सब कली रूपी सर्प या भुजंग से हमें काटा हुआ है, कली रूपी सर्प ने ये विष हमारे हृदय में बढ़ रहा है पूरे शरीर में। इसलिए रूप गोस्वामी के जो अमृतमय उपदेश है इनको हम स्वीकार करते हैं तो कलयुग के जो प्रभाव है उससे हम मुक्त होने लगते हैं। और अमृत का और एक अर्थ भक्तगण कहते हैं कि ऐसा फूड, नेक्टर लाइक फूड जो इजिली डाइजेस्ट हो सके। हाँ तो ये जो उपदेश अमृत के उपदेश है ये बहुत सरल है और हर कोई व्यक्ति इजिली इसको अंगीकार कर सकता है और वो सामर्थ्यवान हो सकता है, पार कर सकता है इस भौतिक जगत की स्थिति को। और अमृत का और एक मतलब आचार्य कहते हैं कि कमिंग टू विदाउट बेगिंग, ऐसे उपदेश जो बिना मांगे हमारे पास आए हैं। और रूप गोस्वामी से वास्तव में हमने नहीं मांगा था, रूप गोस्वामी और प्रभुपद इतने दयालु आचार्यगण हैं कि इन उपदेशों को भेज रहे हैं, उपदेशों की रस्सियाँ भेज रहे हैं, जिस जो हम ये जो कुएं में गिरे हुए हैं, अंधे कुएं में, हाँ इस भौतिक संसार के, उससे हम निकल सकते हैं। और अमृत का एक अर्थ कहते हैं कि स्पिरिचुअल लिकर, आध्यात्मिक शराब। इस अमृत में लिकर को हम चखेंगे, पान करेंगे तो हम क्या होंगे, नशीले हो जाएंगे, आध्यात्मिक नशा, जिस प्रकार से महाप्रभु ने कहा, जपिते जपिते करिल पागल, कृष्ण नाम आदि मुझे पागल मत कर रहा है। तो इसलिए वास्तव में रूप गोस्वामी के जो उपदेश हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें गंभीरता से लेना चाहिए और सिंसियरली प्रयास करना चाहिए भक्तों के संग में इनको समझने का और अध्ययन करने का और इनका अनुपालन करने का। पहला है श्रवण मनन निधि ध्यासनम, श्रवणम करते हैं उस पर मनन करें और उसको अप्लाई करने के लिए हम तत्पर रहें। तो ये रूप गोस्वामी के वचन बहुत प्रभावशाली हैं, क्योंकि इन वचनों से क्या होगा, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के वचनों से नवदीप वासियों के साथ हुआ था, जब निमाय पंडित बंगाल गए थे, बांग्लादेश, जब उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया थी और लक्ष्मी प्रिया महाप्रभु के विरह में उन्होंने देह त्याग किया और फिर निमाय पंडित बंगाल से वापस आए, सब लोग दुखी थे कि इनकी पत्नी तो शरीर त्याग कर दिया है, तो सब दुखी थे। निमाय पंडित आए बंगाल से बहुत खुश थे और यहाँ देख रहे हैं कि सब लोग थोड़े से शांत हैं, थोड़े से दुखी लग रहे हैं। तो फिर निमाय पंडित ने सारी बातें वहाँ की बताई और उनके वचनों को जब सुना तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सुनिया प्रभुरा अति अमृत वचन, सबारा हैल सर्व दुख विमोचन, कि महाप्रभु के इस अमृतमय वचनों को सुनने मात्र से सारे जो इवन जो सची माता आदि हैं या नवदीप के और भी जो वैष्णवगण थे उनके दुख विमोचन हो गया। उसी प्रकार से वास्तव में हमें समझना चाहिए, तब जब तक हमें हम अनुभव नहीं करेंगे कि वास्तव में भौतिक जगत में मैं बहुत दुखी हूँ, आमी बड़ो दुखी, हम रोज गाते हैं आमी बड़ो दुखी, इस भावना को हृदय में लेकर जब अप्रोच नहीं करेंगे रूप गोस्वामी के इन अमृतमय वचनों को, तब तक हमारे हृदय का दुख विमोचन नहीं हो सकता। और दूसरा अर्थ क्या है कि उपदेश अमृत को आप स्वीकार करोगे तो आपके हृदय के सारे जो दुख आदि है वो निकल पड़ेंगे। और क्या दुख है वास्तव में हम सबके पास, हाँ, तो प्रभुपाद कई फेवरेट सॉन्ग थे, उनमें एक फेवरेट सॉन्ग था गोरा पहु ना भजिया महीनो प्रेम रतन धन गेलाय हरायनो। प्रभुपाद के एक फेवरेट सॉन्ग में ये सॉन्ग था, गीत था, और उसमें प्रभुपाद कहते कि मेरा यही दुख है गोरा पहु गौरांग महाप्रभु की जो चरण है ना भजिया महीनो, मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, भक्तों का संग मिला। और वास्तव में हमें सोचना चाहिए हमारे पास क्या ऐसी योग्यता थी जिसके कारण देखो कृष्ण और प्रभुपाद आदि की कृपा से इतना सुव्यवस्था हमारे पास है जिसमें आप सरलता से गुरु और कृष्ण वैष्णव की सेवा कर सकते हो, अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हो सकते हो। हाँ, फिर भी ये सब प्राप्त होने के बाद भी यदि हम गंभीर नहीं हैं कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए, तो प्रभुपाद कहते गोरा पहु ना बजिया महीनो प्रेम रतन धन गेलाया हरायनो, कि मेरे पास जो प्रेम रूपी रत्न था धन उसको मैंने खो दिया है। हाँ, तो वो दिन फिर दूर नहीं होगा। हाँ, कि ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी भक्तों का संग आदि हमें जो प्राप्त हुआ है, फिर एक दिन क्या हो सकता है यदि हम इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो एक दिन हमसे छीना जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्सफुली कृष्ण हमसे अपॉर्चुनिटी ले लेंगे और फिर दूसरा जो रियली ईगर डिवोटीज है कृष्ण उनको प्रदान करेंगे ये सुविधा, उनको ये अपॉर्चुनिटी देंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर की इन शिक्षाओं को भी हमें सोचना चाहिए अपने हृदय में, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजे, ये हमारे हृदय में दुख है। हाँ, कि मुझे इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला, भक्तों का संग आदि मिला, फिर भी मैं राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जानता हूँ, मैं पता है कि ये उचित नहीं है, अनुचित है, भक्ति के लिए सहायक नहीं है, हाँ, मेरे आध्यात्मिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, जो नहीं करना है वही कर रहा हूँ, जानिया सुनिया विष खाइनो, ये दुख हमारे हृदय में है। इसलिए महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, ईश्वरपुरी को जब उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा संसार समुद्र है ते उद्धार मोरे यही आमे देह समर्पिला तुम्हारे कृष्ण पाद पद मेरा अमृत रस पान हमारे कराओ तुम्हें यही चाहिए दान। और वास्तव में गुरु आदि के आश्रय में रहना मतलब कृष्ण के प्रति अनुराग को स्वीकार करना उनके माध्यम से, तो इसी कारण से प्रभुपाद ने ग्रंथ दिए हैं। और जो व्यक्ति प्रभुपाद ग्रंथों को अध्ययन करने से इंटरेस्टेड नहीं है, अध्ययन करने की इच्छा नहीं रखता और अध्ययन नहीं करता, वो वास्तव में क्या कर रहा है, चैतन्य भागवत में उसके लिए कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर हेन दास योग छाड़ी आर जेबाग चाय, कि इस चीज को छोड़कर कुछ और चीज चाहते हो अमृता छाड़िया जेन विष लागी धाय, अमृत ये उसके पास है, इस उपदेश अमृत को छोड़कर विष लागी धाय विष पीने के लिए भाग रहा है, तो वास्तव में ये उचित नहीं है। तो हमें ये जो रूप गोस्वामी के द्वारा संकलित रूप गोस्वामी के हृदय को जो प्रकाशित किया है इस उपदेश अमृत और प्रभुपाद ने जो हमें इसको दिया है इसको हमें स्वीकार करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए इसका अध्ययन करने के लिए, रूप गोस्वामी के इस वंडरफुल ग्रंथ को सीखने के लिए। जैसे मैंने कहा था और मैं 5 मिनट लेता हूँ कंक्लूड करता हूँ इस चर्चा को, तो रूप गोस्वामी का ये जो उपदेश अमृत था इस पर 4 अलग अलग आचार्यों ने अपना तात्पर्य या टीका प्रदान की है। सबसे पहले राधा रमन गोस्वामी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी की दीक्षा परंपरा में हैं, जो राधा रमन की सेवा में थे कुछ 100 साल पहले समथिंग भक्तिविनोद ठाकुर से पहले, तो उन्होंने उपदेश अमृत पर बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा या टीका प्रदर्शित की है जिसका नाम था उपदेश प्रकाशिका, कि उपदेश को उन्होंने लाइट मैनिफेस्ट किया, प्रकाश किया सारे जगत में और उसमें प्रकाश डाला। तो इस प्रकार से गुरु और साधु शास्त्र के आधार लेते हुए उसमें अपने अनुभव को जोड़ते हुए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा को प्रेजेंट करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा कि रूप गोस्वामी के इस उपदेश अमृत को समझने के लिए ये स्टडी हमारे माइंड या बुद्धि से नहीं बल्कि हमारे हृदय से करना चाहिए, तब वास्तव में रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को समझ सकते हैं। और आचार्यों का यही कंक्लूजन है कि वास्तव में उपदेश अमृत को समझना है, हाँ वही व्यक्ति स्टडी कर सकता है उपदेश अमृत का जो व्यक्ति नाम भजन को सीरियस लेता है। हाँ, और आगे चलकर रूप गोस्वामी ने वो बोला है अखिल उपदेश सारम, पांचवे या छठे श्लोक मुझे याद नहीं, हाँ उपदेश सारम, तो वो कहते हैं कि वास्तव में नाम भजन को आप गंभीर लेते हो तब उपदेश अमृत को आप सही में समझ पाते हो सरलता से। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने टीका लिखी जिसका नाम था पीयूष वर्षिणी टीका वृत्ति। पीयूष का मतलब है नेक्टोरियन, वर्षिणी का मतलब है वर्षा, कि अमृत की वर्षा हो रही है ये जो उपदेश अमृत, तो इस पर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने कई टीका लिखी। और वो भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीका पूरी नहीं कर पाए, उन्होंने 6 या 7 श्लोकों पर टीका लिखी और उन्होंने अपने देह को त्याग दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो आगे चलकर उसी टीका को फॉलो करते हुए भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपनी टीका लिखी अनुवृत्ति टीका। और उपदेश अमृत के पर्पट्स को आप पढ़ते हो तो अधिक से अधिक भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टीका को उद्धृत किया है श्रील प्रभुपाद ने। हाँ, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने अनुवृत्ति, अनु का मतलब है फॉलो करना, भक्ति विनोद ठाकुर की जो टीका है उसी को फॉलो करते हुए अपना जो तात्पर्य है उन्होंने प्रदर्शित किया है। और पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में यूनिक टीका किसने प्रदर्शित की है, श्रील प्रभुपाद ने। हाँ, अधिक से अधिक प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कोट किया है अपने टीका के द्वारा। और जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने नहीं भी उद्धृत किया है, हाँ जो रूप गोस्वामी की शिक्षा को प्रभुपाद ने और अधिक इस प्रकार से प्रेजेंट किया कि जो वेस्टर्नर्स हैं वो भी इसको सरलता से समझ सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद के टीका का ये खासियत है तात्पर्य का कि हम सब बैडली जो हैबिट्स है उसमें बहुत अधिक मग्न है, इतने लगे हुए हैं, तो हमें हेल्प चाहिए। तो प्रभुपाद ने इतना सरलता से उपदेश अमृत की टीकाएं दी हैं कि बहुत सरल रूप से हम उसको समझते हैं, अप्लाई कर पाते हैं और सदाचार को सीखते हैं, क्योंकि हमारा जीवन गरीत है, दुराचारी है, अनाचार में हम प्रवृत्त हैं। इसलिए प्रभुपाद की टीका वास्तव में हमें सदाचार के स्थल पर लाती है और प्रभुपाद ने बहुत सरलता से इसको दिया है। इसलिए ये जो बुक है ये कृष्ण भक्ति से भरा हुआ है। हाँ, और जब इस भावना से हम इस बुक को सर्विस एटीट्यूड से समझने का प्रयास करते हैं तब वास्तव में रूप गोस्वामी के द्वारा ये जो अमृतमय उपदेश है वो हमें रिवील होने लगते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी ने कहा कि व्यक्ति वही व्यक्ति श्रवण का अधिकारी है जिसके पास 3 गुण होने चाहिए। एक क्या है, प्रणिपातेन, दूसरा है परिप्रश्नेन और तीसरा है सेवया। ये श्रवण करने के लिए अधिकार है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि प्रणिपात की भावना होनी चाहिए विनम्रता की, और दूसरा है परिप्रश्न के द्वारा जिज्ञासा आदि करने की भावना, और तीसरा है सर्विस। तो इस भावना को लेकर जो उपदेश अमृत को हम सीखते हैं, सुनते हैं, चर्चा आदि करते हैं तो उपदेश अमृत हमारे लिए सरल हो जाता है। और वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उपदेश अमृत की शिक्षाओं को क्या करें, समझें। और इसलिए नहीं उपदेश अमृत को हम सीखे कि जिसके द्वारा मैं दूसरों को प्रभावित करना चाहूँगा, हाँ दूसरों के आँखों में मैं क्या बनूँगा, बहुत अच्छा बनूँगा, इस भावना से हमें उपदेश अमृत को नहीं स्वीकारना चाहिए। हाँ, बल्कि कैसी भावना से, प्रभुपाद लिखते एक तात्पर्य में अहेतु की अप्रतिहता, इस भावना से उपदेश अमृत को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो वास्तव में उपदेश अमृत के रहस्य को हम समझ सकते हैं। तो उपदेश अमृत प्रभुपाद ने बहुत 1974 और 75 के बीच में इसको प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया था। प्रभुपाद के एक शिष्य थे जिन्होंने प्रभुपाद को बोला और बुक दिया, तो फिर प्रभुपाद ने उसको ये किया। प्रभुपाद के एक शिष्य थे ऋषिकेश, वो गौड़िया मठ में भी चले गए थे, फिर वापस आए, प्रभुपाद ने उनको संन्यास दिया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रभुपाद आप ये रूप गोस्वामी का उपदेश अमृत है इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। तो प्रभुपाद ने उसको ट्रांसलेट किया। मैं एक लेक्चर सुन रहा था कुछ महीने पहले जयद्वित महाराज का, तो उन्होंने वो ऑलरेडी उससे कनेक्टेड थे पब्लिशिंग आदि से, तो वो इस बात को बता रहे थे कि इस प्रकार से प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिया, उपदेशामृत को, और फिर प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया और सारे डिवोटीज को प्रदान किया। तो 1976 में जब इसका पहला कॉपी प्रिंट होके आया तो प्रभुपाद ने कहा कि कितनी कॉपीज आपने प्रिंट की हैं, तो उनके शिष्य ने कहा कि 10,000। हाँ, 10,000 तो बहुत कम है। प्रभुपाद ने कहा क्यों, तो तमल कृष्ण महाराज कहते हैं क्योंकि ये ग्रंथ तो केवल किसके लिए है, भक्तों के लिए है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा नहीं। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये सब के लिए है, क्योंकि ये ग्रंथ क्या करता है, दोनों चीज़ें प्रदान करता है। हाँ, एक जो सर्वसामान्य व्यक्ति है उसको कृष्ण कॉन्शियस फिलोसॉफी का थेरोटिकल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है प्रभुपाद ने कहा। इसलिए 10,000 क्यों, प्रभुपाद ने कहा उस रामेश्वर को बताओ तुरंत 1,00,000 किताबें छापे हो उपदेश अमृत। और मैं पढ़ रहा था कुछ रिसेंटली हमारे महाराज के साथ, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ प्रभुपाद का कन्वर्सेशन है, तो प्रभुपाद को बता रहे कि कौन सी किताबें कितनी कितनी छाप रहा हूँ, तो वो उपदेश अमृत को बहुत सारी किताबों का नाम लिखा और क्वांटिटी वो बोल रहे हैं एक कन्वर्सेशन में। तो वो कह रहे हैं कि भगवदगीता इतने लाख और ना अलग अलग, तो उपदेश अमृत कहते कि 2,00,000, महाराज कहते कि 2,00,000 बुक छाप रहा हो, तो प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से उपदेश अमृत केवल भक्तों के लिए नहीं, बल्कि प्रभुपाद कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए है, हर जीव के लिए है। तो इस प्रकार से इस उपदेश अमृत ग्रंथ को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है, आप अपने पास एक पर्सनल कॉपी ले लीजिए, जिनके पास नहीं है वो पद्मपुरी प्रभु को बोल सकते हैं, तो पद्मपुरी प्रभु फिर हिंदी या इंग्लिश जो भी कॉपी आपको चाहिए वो आपको दे देंगे लेकर। और फिर अगले थर्सडे भी हम चर्चा करेंगे, तो आगे थर्सडे आपको ये पढ़ के आना है, एक तो एक श्लोक याद करके आना है पहला श्लोक उसके मीनिंग के साथ, और दूसरा पहला श्लोक का तात्पर्य पूरा पढ़ के और जो अमुक है उसको भी पढ़ के आना है। हरे कृष्णा। भरतराज उपदेशामृत के श्रील रूप गोस्वामी।